नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। 5 अगस्त 2024 का दिन बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले 15 अगस्त 1975 को भी बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सत्ता को लहूलुहान किया गया था, लेकिन दोनों घटनाओं में अगर अंतर है तो बस इतना कि 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजिबुर रहमान के अलावा मुजिबुर रहमान के बेटों, बहुओं, पोता पोतियों और भतीजों तक का कत्ल कर दिया गया, जबकि 5 अगस्त 2024 की घटना में शेख हसीना की जान बख्श दी गई, लेकिन उन्हें बांग्लादेश से खदेड़ दिया गया। और बांग्लादेश में इस बार जो कुछ हुआ उसके पीछे नौजवानों का गुस्सा था, और इस गुस्से की आग को कहां से इतना घी मिला कि उसने 15 साल से देश पर काबिज एक ताकतवर सत्ता को बस कुछ एक पलों में उखाड़ कर फेंक दिया, ये बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये तो सोचना ही पड़ेगा कि जब जब सत्ता अहंकार की आगोश में समाई उसका सत्यानाश तय हो गया। शेख हसीना ने भी सत्ता के मद में नौजवानों को नज़रअंदाज किया और उसका भयावह नतीजा सबके सामने है। और ये भारत के लिए भी सबक है, क्योंकि उसकी भी 90 करोड़ नौजवान आबादी रोज बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दों से खदबदा रही है और सड़कों पर उतर रही है। हालांकि भारत का विपक्ष और लोकतंत्र का मिजाज दक्षिण एशिया के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग और पुख्ता है, लेकिन सत्ता के अहंकार को नौजवानों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। यह भी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सफ़ेद सच है, यानी बांग्लादेश की घटना भारत और तमाम दुनिया के देशों के लिए एक सबक है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसलिए कॉलम अपन तो कहेंगे कि इस खास एपिसोड में मेरे विचार का शीर्षक है हसीना का हश्र और भारत। हाँ, सबक इस नाते कि बांग्लादेश में उलटफेर न केवल भू राजनीति में भारत को भारी झटका है, बल्कि भारत के अंदरूनी हालातों में सोचने का एक पहलू भी है। बांग्लादेश की सड़कों पर सोमवार को हर तरफ लड़के लड़कियों का सैलाब उमड़ा हुआ था। इससे दक्षिण एशिया की नौजवान आबादी के सवाल उठते हैं, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर भी कि भारत में यूथ कोई 65% या कि 90 करोड़ नौजवान हैं। सवाल है, हम अपने नौजवानों को कैसे हैंडल करते हुए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी तरफ के अनुभव जब खदबदाते नौजवानों का है, तब भारत के नौजवानों को लेकर हम क्या सोचें। बांग्लादेश में साबित हुआ है कि विकास आंकड़ों जुमलेबाजी विरोध असंतोष की सख्ती से प्रेशर कुकर में बंद रखने के बावजूद ढक्कन जब फटता है तो देश के लिए फिर यही रोना है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हसीना वाजेद की शुरुआत अच्छी थी, 1996 में पहली बार और 2008 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन उन्होंने लंबा राज किया। उनकी शुरुआत अच्छे दिन और लोकतंत्र के वादे की थी, लोकतांत्रिक राजनीति के व्यवहार की थी। निर्विवाद है कि उनकी कमान में बांग्लादेश ने कपड़ा उद्योग में कमाल किया, दुनिया में बांग्लादेश का नाम हुआ, उसने भारत को प्रति व्यक्ति आय में पछाड़ा। लेकिन फिर हसीना वाजेद में अहंकार जागा, सत्ता की भूख बनी और विपक्ष को खत्म करना शुरू किया। अघोषित इमरजेंसी, तानाशाही और जोर जबरदस्ती का वह सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों की राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में विश्वास ही खत्म हुआ। चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठे, लोगों का भरोसा टूटा और विपक्ष के चुनावी बहिष्कार का सिलसिला शुरू हुआ। हालिया जनवरी 2024 के आम चुनाव में भी विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया था। पूरी दुनिया में आतंक और खौफ के माहौल में हुए एक तरफा चुनाव की निंदा हुई। तब हसीना वाजेद के साथ यदि कोई खड़ा था तो वह अकेले भारत था। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोवाल, विदेश मंत्री जयशंकर आदि ने हसीना वाजेद को समझाने, सुधरने और लोकतंत्र तथा चुनाव को साफ सुथरा बनाने जैसी कोई सलाह नहीं दी। तभी बांग्लादेश में धारणा बनी कि भारत की मोदी सरकार तानाशाह प्रधानमंत्री हसीना वाजेद की संरक्षक है। भारत ने अपनी प्रतिष्ठा हसीना वाजेद के लिए दांव पर लगाई, शायद इसलिए क्योंकि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के अलावा भारत की सभी पड़ोसियों से खटपट है, सभी देश चीन के अनुगामी हैं। इसलिए शेख हसीना वाजेद का रुतबा बनाने के लिए मोदी सरकार ने कई तरह के कई काम किए। बांग्लादेश में हसीना वाजेद का विकास क्रोनी पूंजीवाद के उसी मॉडल पर है जैसा भारत में है। तभी आर्थिक असमानताओं में बांग्लादेश में भी रिकॉर्ड तोड़ गरीब बनाम अमीर का अंतर है। भारत की ओर से बांग्लादेश में मोदी सरकार की ताकत के बूते अदानी समूह ने भी हसीना सरकार के बड़े कारोबारी सौदे पटाए हुए हैं। इसलिए ये खबर समझ में आती है कि आंदोलनकारियों ने उत्पात हिंसा में भारत के झंडे, दोनों देशों की मैत्री के होर्डिंगों पर अपना गुस्सा निकाला। लाख टके का सवाल है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसकी भनक क्या भारत को थी? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से यह सवाल बनता है कि क्या उनको और उनकी एजेंसियों को अनुमान था कि हसीना वाजेद की सरकार अचानक ढह भी सकती है? बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा और खदबदाहट का भारत सरकार का कोई आकलन था या नहीं, या यही सोचा जाता रहा कि सख्त शासन और विकास के झांसों से नौजवानों का विरोध या रजाकार के जुमले के खिलाफ गुस्सा चंद दिनों में ठंडा पड़ जाएगा? मैं भारत की तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दक्षिण एशिया और भारत सभी तरफ नौजवान आबादी का सैलाब है। भारत में नौजवानों की बेचैनी छुपी हुई नहीं है। यदि अग्निवीर योजना, नीट परीक्षा और छोटी व मामूली संख्या की नौकरियों के लिए लाखों नौजवानों की भीड़ बन रही है तो गंभीरता से सोचना होगा कि भारत कैसे नौजवान आबादी का ध्यान रखे हुए है। कह सकते हैं कि भारत दक्षिण एशिया का बिरला देश है। बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी परंपरा नहीं है। भारत में लोकतंत्र पुख्ता है। पक्ष विपक्ष की वह राजनीति नहीं है जो दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में है। सवाल है उस राजनीति में क्या गिरावट नहीं है? मोदी सरकार के शासन में भारत भी तो लोकतंत्र की कसौटी में वैसे ही वैश्विक बदनामी लिए हुए है जैसे हसीना सरकार की थी। मानकर चले हसीना वाजेद सरकार के पतन से अमेरिका सहित वे सभी सभ्य लोकतांत्रिक देश खुश होंगे जिन्होंने हसीना वाजेद सरकार को चेताया था, उस पर दबाव बनाया, बावजूद इसके वे नहीं समझी। मेरा मानना है कूटनीति की भागदौड़ में पश्चिमी देशों ने मोदी सरकार को भी समझाया होगा कि हसीना सरकार को लोकतंत्र के रास्ते पर लौटाए, लेकिन लगता है कि मोदी डोवाल जयशंकर ने अपने आत्मविश्वास, अपने तौर तरीकों में न तो दीर्घकालीन सिनेरियो सोचा और न बांग्लादेश की जमीनी हकीकत पर नजर रखी। यह तो कल्पना ही नहीं रही होगी कि राजधानी ढाका आंदोलनकारियों से पटेगा और हसीना वाजेद भगोड़े प्रधानमंत्री का कलंक बनाकर दिल्ली आएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश और सामरिक नीति की अब नंबर एक असफलता है बांग्लादेश में हसीना वाजेद सरकार का पतन। यह संभव नहीं है कि शेख हसीना को यूरोप का कोई सभ्य देश शरण दे। भारत को ही उन्हें शरण दिए रहना होगा और इसका असर बांग्लादेश के लोगों पर होगा। बांग्लादेश में हिंदू आबादी के लिए जीना और दुभर होगा। सवाल है, क्या बांग्लादेश की सेना प्रमुख और सेनाधिकारी शेख हसीना के प्रति वफादारी और भारत के प्रभाव में बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? मुश्किल है। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके समर्थकों के खिलाफ अब ऐसी नफरत है कि बांग्लादेश का रास्ता अब अलग ही होना है। आखिर इतना घना जन उन्माद क्यों बना? इसलिए क्योंकि देश कोई हो, लोग जीवन की वास्तविकताओं में तब तिल तिल कर हर पल भुनभुनाते हैं जब उनके दिलो दिमाग में खलनायक चिन्हित होता है। फिर नौजवान खून यों भी भभकता ज्यादा है। यह बात दक्षिण एशिया के हर देश पर लागू है। हसीना वाजेद ने विरोधी नेताओं को जेल में डाला, राजनीतिक पार्टियों को काम नहीं करने दिया, चुनाव धांधली से जीते और कट्टरपंथी मुसलमान संगठनों से लेकर एनजीओ सभी को औकात बताए रखी। तो इस सच्चाई की गंभीरता पर गौर करें कि आरक्षण के खिलाफ और विरोधियों के लिए रजाकार जुमले से भड़क कर लोगों का कैसा जनसमूह सड़कों पर उतर आया। जाहिर है वे विलेन के नाते यूथ के दिमाग में चिन्हित थी। इस सत्य पर भी गौर करें कि इतने दिनों के आंदोलन में हसीना वाजेद के लिए एक भी बार राजधानी ढाका में उनके हिमायती व सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के बचाव के लिए सड़क पर नहीं आए। ऐसे में पुलिस और सेना क्या कर सकती है? बांग्लादेश के लोगों का आज व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया, मीडिया और अदालत या कि राष्ट्र राज्य के किसी भी उस बंदोबस्त पर विश्वास नहीं है जिससे राजनीति सामान्य हो सके या देश को आज़ादी दिलाने वाली और बांग्लादेश की आर्थिकी का नाम ऊंचा करने वाली अवामी लीग पार्टी या माफ़ी भी मांग पाए कि हमसे गलती हुई है। कम से कम राष्ट्रपिता मुजिब्बुर रहमान की प्रतिमा का तो सम्मान करें। सोचे, बांग्लादेश को आजाद कराने वाले मुजिब्बुर रहमान और सर्वाधिक शासन करने वाले शेख हसीना वाजेद की 5 अगस्त 2024 की दुर्दशा और हश्र पर जिम्मेवार शेख हसीना स्वयं हैं। उन्होंने अपने हाथों अपनी और अपने पिता की विरासत पर कालिख पोती। उन्होंने अपने हाथों बांग्लादेश के लोकतांत्रिक आइडिया में देश में सच्चा लोकतंत्र बनाया, लेकिन फिर सत्ता के अहंकार, उसके मोह और लालच में वह सब किया जिससे लोकतंत्र को ही झूठा बना डाला। अब उन नौजवान बांग्लादेशियों ने उन्हें देश से भगाया है जिनको लेकर उन्होंने कहा था कि ये कट्टरपंथी इस्लाम से गुमराह हैं या आतंकी और देशद्रोही हैं। जाहिर है मामला जमीनी हकीकत का है, लोकतंत्र के चेक बैलेंस का है। शेख हसीना ने एक बार भी नहीं सोचा कि विपक्ष को खत्म करने से अराजकता के अवसर बनते हैं। भारत का सौभाग्य है जो विपक्ष 1975-77 में जिंदा था, तो 2014 से विपक्ष को खत्म करने की मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी निज जिजीविषा से जिंदा है। मोदी और अमित शाह ने देश को पानीपत की लड़ाई के मैदान में कन्वर्ट करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन विपक्ष क्योंकि जिंदा था तो लोगों में उम्मीद रही। विपक्ष से नौजवानों को, अग्निवीरों को, किसानों और सभी समुदायों और वर्गों को आवाज मिल रही है। आशंकाओं, चिंताओं और अनुभवों के बावजूद लोकतंत्र और चुनाव में लोगों की आस्था है। तभी ये बात गांठ बांध लें कि लोकतंत्र और उसकी प्रक्रिया गृहयुद्ध अराजकता को रोके रखने का एक ठोस सेफ्टी वॉल्व है। इस बात को जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अंदरूनी राजनीति में समझना चाहिए, वहीं सामरिक और भू राजनीति के पहलू में अजीत डोवाल, जयशंकर को जान लेना चाहिए कि लोकतांत्रिक मिजाज के देशों के साथ रिश्ते टिकाऊ होते हैं। दक्षिण एशिया की कूटनीति में पड़ोसियों में लोकतंत्र के पोषण की नीति होनी चाहिए, न कि चुनावी धांधलियों और अहंकारी शासकों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने की। एक बात और बांग्लादेश की घटनाओं से प्रमाणित है कि दक्षिण एशिया के लोग एक सी तासीर लिए हुए हैं। गौर करें सार्क के सभी देशों पर, सभी देश इस समय नौजवान आबादी से लबालब भरे हैं। सभी देशों में बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों ने नौजवानों का जीना हराम किया हुआ है। हर देश आर्थिक कुप्रबंधों, आर्थिक असमानता और अपने अपने अदानी अंबानी लिए हुए है। सभी देशों में क्रोनी पूंजीवाद और भ्रष्टाचार है। सभी देश जलवायु परिवर्तन और आपदाओं विपदाओं के मारे हैं। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में राजनीतिक अराजकता बनी, वहां के राष्ट्रपति ने भी भागकर दूसरे देश में शरण ली। उस आंदोलन के अगुवा भी नौजवान थे। ऐसे ही पाकिस्तान में इमरान खान ने अपने अहंकार में अपनी राजनीति चमकाई तो संकट हुआ, आर पार का चुनावी घमासान हुआ। तब इमरान खान के लिए नौजवान सड़कों पर उमड़े थे। हालांकि चुनाव में धांधली और सेना की मदद से बागडोर अभी शरीफ के पास है, लेकिन पाकिस्तान जस का तस अधर में है, उसकी आर्थिकी टूटी हुई है। ऐसे ही नेपाल यदि अस्थिरता के भंवर में है तो इसका जमीनी कारण नौजवानों की बेगार भीड़ से नेताओं की बेचैनी है। लोगों की उम्मीदें सुरसा की तरह है और नेपाली नेता सरकार बना या बिगाड़ कर लोगों को भरमाते हुए हैं। इसीलिए भारत की 140 करोड़ लोगों की आबादी में उन 90 करोड़ नौजवानों को लेकर सोचना जरूरी है जिनमें नौकरियों के लिए फड़फड़ाहट है, आरक्षण की भूख है और बेगारी करते करते यह सोचना कि ऐसे कब तक जिंदगी चलेगी। पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।